ओम शांति। अभी हम सभी ने आदरणीय दीदी जी के द्वारा बहुत सुंदर क्लास सुने, तो जिस विषय पर आप क्लास सुने, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इसी विषय को हम दीदी से क्लियर कराना चाहेंगे कि दीदी, ये जो तीनों महामंत्र बाबा से हमें मिले हैं, तो ये तीनों बातों की स्मृति सदा बनी रहे और जीवन में अनुभूतियां होती रहे और हमारे स्वरूप से भी लोगों को दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या करें?
ब्राह्मण जीवन पुरुषार्थी जीवन है और पुरुषार्थ में हमारा लक्ष्य हमेशा याद रहना चाहिए कि हमें ये बनना है। तो जब लक्ष्य दृढ़ होगा और अटेंशन होगा तो हम लक्षण धारण करेंगे। जैसे अभी अभी बाबा की मौली थी ना, कि लक्ष्य अनुसार हमारे लक्षण होने चाहिए, तो ये हम रखेंगे तो हो जाएगा। टाइम जरूर लगेगा, परंतु स्व सेवा का हमें जरूर लक्ष्य रखना है और बाबा की याद भी पावरफुल होनी चाहिए।
दीदी, कई बार कई गृहस्थ वाले कहते हैं कि बाबा तो कहते हैं घर गृहस्थ में रह करके सबके साथ तोड़ निभाना है। तो तोड़ निभाने का अर्थ क्या है? जो घर वाले कहते रहे वो सब करते रहे?
देखो, बाबा हमको कहते हैं योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त रहना है। हमें श्रीमत का भी पालन करना है तो अच्छा संबंध भी रखना है। ऐसे नहीं कि नहीं, कई बार ऐसा होता है, बाबा कहते हैं ना नष्ट बुआ बनो, तो घर में बीमार होगा या मित्र संबंधी कोई बीमार होंगे, फोन भी नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं, खाना पीना भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ऐसे प्यार से व्यवहार करो, परंतु श्रीमत का जरूर पालन करना है। कमल फूल समान जरूर रहना है, अपना खान पान में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वहां थोड़ी ऑपोजिशन होती है। हमारे घर का नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे होकर हमारे घर का नहीं खाएंगे, ना कहेंगे हमारा सारी उम्र हमारे हाथ का खाया और अभी नहीं खाएंगे। तो वहां हमको प्यार से, मिठास से अपना नियम बताना है, क्योंकि कोई तो परिवार वाले अच्छे होते हैं, समझदार, और छोड़ देते हैं, परंतु इंडिया में ज्यादातर थोड़ा ये पक्का रस्म है कि घर में जो मेहमान आए उसको जरूर खिलाना पिलाना है, तो वहां मुसीबत हो जाती है। विदेश में ये बात अच्छी है, विदेश में माँ बाप थोड़े न्यारे होते हैं, पर सब नहीं होते हैं। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में दो भाई थे, ज्ञान में पक्के थे, माँ नहीं थी ज्ञान में और बाप तो था ही नहीं। तो जब घर जाते थे तो माँ कहते थे, तुमको सूप अच्छा लगता है ना, मैंने सूप बनाया है, या देखो मैं नया ब्रेड टिन लाई हूँ, उसमें ब्रेड बनाई है। पर वो भाई ऐसे पक्के थे, कहते थे, माँ तुम्हारा मुंह तो है ना, तुमने शिव बाबा की याद में तो नहीं पकाया है ना, तो पके रहे हैं भाई। और हमारा भी लौकिक में बहुत अच्छा रहा, जब से मैं सेंटर पर रहना शुरू किया, घर जाती थी हफ्ते में एक बारी, हमारा घर 5 मिनट का ही रास्ता था, तो जाती थी, परंतु खाना पीना नहीं, सिर्फ फल दूध छाछ ऐसे ले लेती थी, और उनों को माइंड नहीं होता था। और मैं जब विदेश से आती थी तो मेरे लौकिक पिता, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे चाचे के लड़के लड़कियां, उसके पति, हमारे बहन बनोई भाई भाभी सबको 40 जनों को बुलाता था, और मैं जाती थी, मैं सिर्फ फल खाती थी, भोजन के लिए उन्हों को बुलाता था, मेरे खाता पर मैं नहीं खाती थी, तो भी उनको माइंड नहीं होता था। तो कोई कोई तो अच्छे होते समझदार जो चला लेते हैं।
बहुत सुंदर दीदी ने बताया कि कितना सुंदर कि सुख दो लेकिन श्रीमत मर्यादा के अंदर रहकर, तोड़ करके नहीं। अगर हमने श्रीमत मर्यादा तोड़कर सुख दिया तो वो दुख हो जाएगा। भोजन का कितना सुंदर मिसाल दिया, अगर घर में ऐसा होता है माताएं बोलेंगी तुम मेरे बेटे तुम मेरा ही हाथ का बनाया हुआ नहीं खाओगे, बाबा का ज्ञान यही कहता है क्या? तो कई बार हमारा तो अब बाबा की श्रीमत क्या कहती वहां पर ये लाएं। तो घर में रहना है, सबको प्यार से संभालना है, सबके साथ प्यार से चलना है, लेकिन उतना ही श्रीमत का भी ध्यान। बहुत सुंदर दीदी ने बताया। दीदी जैसा कि अभी लेटेस्ट अव्यक्त मुरली में बाबा ने
तो
कहा,
हो गया अभी अभी लक्ष्य और लक्षण का तो हमने अभी बात करेंगे।
अच्छा
नेक्स्ट तो
फिर कई बार हम ये भी कहते हैं कि हमने अपने अंदर की बहुत सारी कमी कमजोरी, कई बार हमने बाबा से वायदा किया, प्रतिज्ञा किया, लेटर भी लिखे, अना रियलाइज भी किया कि बाबा आगे से नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो हमसे दोबारा बार बार रिपीट हो जाता है, तो क्या करें कि दोबारा रिपीट ना हो? फिर हमें आत्मग्लानी होती है, अरे हमने बाबा से प्रतिज्ञा किया था और ये फिर से हो गया, तो ऐसा हम क्या करें कि दोबारा वो बार बार गलतियां रिपीट ना हो?
देखो संस्कार मिटाना है तो दृढ़ता जरूर होनी चाहिए कि मुझे ये संस्कार छोड़ना ही है। लिख कर दो बाबा को, माफी मांगो। और यदि बाबा को बोलकर भी हल्कापन फील नहीं होता है या योग अच्छा नहीं लगता है तो जो निमित्त बहने हैं उनको सुनाओ, क्योंकि कई बार सिर्फ लिखने से हल्के नहीं होते हैं,
हमें संकोच होता है सुनाने में।
तो इसलिए जो निमित्त बहने हैं उनको जरूर सुनाओ और खुद को सजा दो। दीदी जी कहती थी गलती हुई जाओ बाबा के कमरे में बैठकर 2 घंटा योग करो। तो खुद को सजा देनी है, योग तपस्या करना है, और जितना योग लगाएंगे संस्कारों का अंतिम संस्कार हो जाएगा।
और दीदी जैसा कि हम ये कि हाँ भाई निमित्त को बता दें, है ना, दीदियों को बता दें, फिर सामने वाले के अंदर में ये भी संकल्प चलता है कि दीदी हमें किस नजर से देखेगी, इसने ऐसा किया, तो फिर ऐसे समय पर क्या करें?
ये संकल्प नहीं उठाओ।
ठीक है
क्यों क्यों कि जो निमित्त है उन्होंने ये समाने की शक्ति होती है कि उनकी भूल को क्षमा भी कर दे, समा भी ले और पास्ट को खत्म कर दे। क्योंकि बाबा कहते हैं रहम दिल बनो और शुभ भावना रखो
जी।
रोज हम बदलते रहते हैं, पास्ट में वो हो गया, अभी भी ये है ऐसा ही, ये कभी नहीं सोचो, पास्ट पास्ट।
और हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बाबा ने इनको निमित्त बनाया है ना, तो अगर इस भाव से हम बाबा ने इनको निमित्त बनाया है तो इनको बताना माना इनडायरेक्ट बाबा को बताना, तो बाबा से मदद और शक्ति मिल जाएगी। फिर जैसा कि हम सभी इसमें से सब परिवार वाले बहुत हैं, घर गृहस्थ वाले, तो हर एक का ये रहता है कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए हमारा कर्म और योग का सुंदर संतुलन रहे, सुंदर बैलेंस बना रहे, उसके लिए हम क्या ध्यान रखें?
कार्य करने के पहले बाबा को याद करो और बीच बीच में भी चेक करते रहो, बाबा की याद में करते हैं और अपने को जितना बाबा को अर्पण कर देंगे ना तो समझेंगे सब कुछ बाबा का है, ये शरीर भी बाबा का है, तो जो कुछ करना है बाबा के लिए करना है, तो इसलिए बाबा बाबा करते रहेंगे ना तो कर्म योग रहेगा। और स्थूल और सूक्ष्म की भेंट करो, समझो आज आप गार्डन में हो, गार्डन में काम करते हो, और तो याद करो बाबा भी कितना बड़ा गार्डनर है, हाँ कितने कांटों को फूल बनाते हैं और हमारे में जो भी कीचड़ा है वो निकाल देते हैं। जैसे देखो जो गार्डनर होगा ना वो पौधे को आसपास जो निकम्मा घास होता है ना, वीड्स कहते हैं इंग्लिश में, वो तो वो निकाल देता है ताकि वो एनर्जी धरती का जो है वो फालतू ना ले जाए और जो मुख्य पौधा है उसको ही धरती की जो भी पानी है और एनर्जी है मिले। तो इस रीत से बाबा भी हमारे को कितना साफ करते हैं, हमारे अंदर जो भी कचरा भरा पड़ा है निकाल देते हैं, हमारे में गुण भरते हैं। तो मतलब काम भी करो और बाबा को भी याद करो। और विशेष ऑस्ट्रेलिया के भाई लोग क्या करते थे कि ड्राइविंग करते करते बाबा को याद करना है, क्योंकि जैसे मम्मा कहती थी कोई भी गाड़ी अंत के लिए समझो, तो वो हमेशा समझते थे कि हम बाबा की याद में रहे, क्योंकि कार का एक्सीडेंट सडनली हो गया तो इसलिए बाबा की याद में ज्यादा रहते थे। रेड लाइट आती थी तो जैसे ऑटोमेटिक बाबा की याद रहती थी, नहीं तो ज्ञान के पहले रेड लाइट आती थी तो इतने मन में चिढ़ होती थी कि देखो हमको रुकना पड़ा, पर अभी रेड लाइट देकर बाबा को याद किया। और कई लोग तो पॉकेट में डायरी रखते सवेरे की मुरली की पॉइंट्स, रेड लाइट आई तो मुरली की पॉइंट रिवाइज करते हैं। और शुरू शुरू में तो बहुत शौक था ना इनको, घंटे घंटे का अपना चार्ट रखते थे डायरी में, एक घंटे में हमारी कितना मिनट याद रहे। तो जैसे अपना चार्ट भी रखें, अपना चार्ट भी देखें और कर्म भी करना है, कर्मयोगी भी बनना है। तो इसी रीत से अपना ध्यान रखने से हम कर सकते हैं।
बहुत सुंदर, कितनी सुंदर विधि बताई कि जैसा कर्म वैसा योग अभ्यास, उसमें हम जोड़ लें अलग अलग कर्मों में योग अभ्यास, तो नेचुरल हमारा योग हो जाएगा। फिर बाबा भी अव्यक्त मुरली में कहा कि जैसे देह अभिमान नेचुरल हो गया है, तो ऐसे देही अभिमानी स्थिति इसे नेचुरल बनाओ। तो देही अभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल कैसे बने?
नेचर को बदलना हमारा काम है, लक्ष्य रखना है, क्योंकि घड़ी घड़ी याद दिलाने से वो नेचुरल बन जाएंगे। चेक करो, घड़ी घड़ी चेक करो और याद में रहो, तो क्या होगा, हम देही अभिमानी बन जाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि जैसे बच्चा जन्मते तो उसको नाम मालूम नहीं है, और रोज उसका बच्चे को नाम लेके बुलाते हैं ना माँ बाप, तो 6 महीने का बच्चा भी समझ जाता है कि मेरे को याद करता है, मुझे बुलाते हैं। तो जैसे उसका नाम बोलते हैं वो उस तरफ देखते हैं। तो ये भी क्या है, हमें अपने आप को घड़ी घड़ी याद दिलाते ही रहना है।
बहुत सुंदर। तो देही अभिमानी अवस्था बनाने के लिए अटेंशन, और बार बार अपने को उस स्थिति में स्थित करें, याद दिलाएं। एक बात दीदी, 10 अक्टूबर की मुरली में जो भी चली, तो उसमें बाबा ने कहा फरिश्ता और निराकारी अवस्था बनाने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। तो निरहंकारी स्थिति हमारी सदा रहे, कभी भी किसी भी बात का सूक्ष्म अभिमान भी ना आए, उसके लिए हम क्या ध्यान रखें?
देखो, बाबा ने हम सब बच्चों को विशेष बनाया है। कईयों की विशेषता ज्ञान के पहले भी होती है, कईयों ने वो विशेषता ज्ञान के बाद धारण की है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी विशेषता है, बाबा ने मुझे दी है, ये बाबा की देन है, बाबा की गिफ्ट है, मेरी नहीं है, ये समझना। जैसे कहते हैं ना कि सोने के फूल में सुगंध भरना बाबा का काम है, अर्थात हम सोने के भी होते हैं पर बाबा उसमें सुगंध भरता है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में कई एक्टर्स, म्यूजिशियंस आदि ज्ञान में आते थे, तो वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि ज्ञान के पहले भी वो एक्टर्स थे और अभी ज्ञान के बाद क्या हुआ कि वो नर्वस नहीं होते। पहले क्या होता था, जब फर्स्ट डे ओपनिंग डे होता है ना, तो बहुत न्यूज़पेपर वाले आकर रिव्यू करते हैं और उसका ओपिनियन देते हैं, तो पहले दिन थोड़ा नर्वस हो जाते थे, अभी नहीं। मतलब बाबा ने ये हिम्मत दे दी, या बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बना दिया। और इतने तक एक म्यूजिशियन ने तो अपना ये अनुभव बताया कि एक सिंगर था बहुत फेमस और बहुत उसने गीत गाए थे, पर एक दिन सडनली एकदम नर्वस हो गया। कहता है शो पर, स्टेज पर आकर कहता है मेरा तो गला नहीं चलता है। अभी ये म्यूजिशियन ने उसको कहा, भाई नहीं नहीं ठीक है हो जाएंगा करके हिम्मत दिलाकर उसको खड़ा कर दिया और उसने गाना गाया। तो क्या है कि हमने देखा है कि बाबा बच्चों को विशेष में भी विशेष बनाते हैं, इसलिए बाबा बाबा करते रहो, बाबा ने मुझे बनाया, हिम्मतवान बनाया है या एक्सपर्ट बनाया है, बाबा बाबा करते रहो। जो विशेषता है बाबा ने दी है,
बहुत सुंदर। अगर हम हर विशेषता ये समझेंगे, जो भी हमारे अंदर विशेषता गुण कला योग्यता ये सब बाबा की देन है, प्रभु प्रसाद है, तो हमारे अंदर कभी भी अभिमान नहीं आएगा और हमारी निरहंकारी अवस्था रहेगी। दीदी, लौकिक घरों में रहते, वातावरण में रहते, कार्य क्षेत्र में रहते, लौकिकता का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हम सदा अलौकिकता में रहें, अपनी रूहानियत में रहें, उसकी विधि क्या है?
देखो, जो पावरफुल है वो दूसरे के रंग में नहीं रंगता, अपने रंग में औरों को रंगते हैं। इसलिए मैं जितनी पावरफुल होंगी, मैं उन्हों को दूसरों को मेरा जैसा बनाएंगी, उन्हों के रंग में मैं नहीं लग जाएंगे। इसलिए हमें पावरफुल बनना है और सदैव रूहानियत में रहना है। घर में रहते भी ये समझना है, ये बाबा का घर है, अपने लौकिक को समझो, ये बाबा के बच्चे हैं। तो क्या होगा, हमारी दृष्टि वृत्ति बदलने से उनों को भी दृष्टि वृत्ति बदल जाएंगे।
तो बहुत सुंदर, लौकिकता को अलौकिकता में बदलने के लिए पावरफुल स्टेज। तो जितनी हमारी पावरफुल स्टेज रहेगी, किसी लौकिक चीजों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लौकिक वातावरण वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव पड़ेगा। फिर समय हो रहा है इसलिए हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि कई बार भाई बहने बोलते हैं कि हम यहाँ भट्टी में आते हैं, 3-4 दिन रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम यहाँ से जाने के बाद फिर घर में गए और फिर वैसे के वैसे, तो घर में भी यही अनुभूति होती रहे और सुंदर हमारी स्थिति बनी रहे, उसके लिए हम क्या करें?
देखो, हमारी पढ़ाई है अंत तक, हमारा योग है जहाँ तक जीना है, पढ़ना है, योग लगाना है और अपनी धारणा पर विशेष अटेंशन देना, क्योंकि गॉडली स्टूडेंट लाइफ है तो चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान रहे। घर में जाकर गृहस्थी नहीं बन जाओ, घर में जाकर ट्रस्टी होकर रहो और गॉडली स्टूडेंट रहो के रहो। तो जितना स्टडी पर ध्यान देंगे, नेचुरली है योग और धारणा पर ध्यान रहेगा और सेवा ऑटोमेटिक आपके पीछे भागेंगे। आज सवेरे बाबा ने कहा ना, जिसके पीछे भागते हो तो वो आगे चले जाता है, पर आप पीठ करेंगे तो परछाई के बीच से आपके पीछे आएंगे। तो इसलिए हमें लौकिक में भी रहकर अपने को गॉडली स्टूडेंट समझकर पढ़ाई पर, योग पर, धारणा पर पूरा अटेंशन देना है। यहाँ से अभ्यास किया है ना, ये अभ्यास चालू रखना। समझो हमारी भट्टी जीवन भर की है, चार दिन की नहीं है।
तो ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। कि नहीं सोचना कि हमारी दो दिन की या चार दिन की भट्टी, लेकिन पूरे जीवन भर की भट्टी, और हमेशा गॉडली स्टूडेंट बन करके रहना है। तो पढ़ाई पर अटेंशन रहेगा तो पढ़ाई में चारों विषय आ जाते हैं। बहुत सुंदर, दीदी ने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। दीदी जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। दीदी जी का हम पुनः एक बार स्वागत करते हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।